वरना अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 26 रबीउल थानी दिसंबर की 2 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील, प्रोग्राम सनराइज शो विद अदील में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक और आप लोगों के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा एंड आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और दिस ऑफ कोर्स इज द पेनल्टिमेट शो ऑफ द वीक, या पेनल्टिमेट सेकंड लास्ट, या सो साहिर अली बग्गा की आवाज़ आप सुन रहे थे। वैसे ईमानदारी की बात है, गाना मैंने कभी खुद भी नहीं सुना, लेकिन कुछ मुख्तलिफ सा गाना है काफ़ी। यानी साहिर अली बग्गा आमतौर से बहुत ही हाई पिच और हाई स्केल पे गाने गा रहे होते हैं, बट दिस वन साउंड्स डिफरेंट। बहरहाल जी, आज प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा मैंने लेट किया है और उसके लिए मैं ज़रा माजरत ख्वाहूँ। और थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हुआ हुआ था कल रात से, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आज सुबह तक नज़र आया। And here we are. और आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा मेरी आवाज से that my throat hasn't really recovered like since अब तो 2.5 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं। और I don't know, I thought weekend पे सब ठीक हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद एक बार फिर से कुछ मसला चल रहा है। So let's see what happens. Anyway, program में अगर आपको participate करना है तो फिर आप मुझे tweet कर सकते हैं, लेकिन अपने ट्वीट के साथ हैशटैग सनराइज विद अदील जो है वो जरूर लिखिएगा। दैट इज वन वर्ड। सो हियर वी आर। अच्छा, आप में से कुछ लोग समझ रहे थे कि मैं छुट्टी पर हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है जी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए, छुट्टी करनी होती है ना, मैं जनरली ट्वीट करके आपको बता देता हूँ, तो आप जो है ना वो ट्वीट करके चेक कर लिया करें, देख लिया करें मेरा ट्विटर पे कि मैंने जो है वो ट्वीट किया है क्या इस बारे में। सो या लेट्स सी व्हाट्स द सीन। और लोगों के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जिनको मुझे प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, अच्छी बात तो यही बनती है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। और आज ब्रेक सुबह के पहले हाफ में भी अच्छे ब्रेक्स हैं, अच्छे ब्रेक्स हैं। चलें सुबह सुबह आइए, सुनते हैं इश्तेहारात, ठीक है जी, और मिलते हैं आपसे इसके बाद। So don't go anywhere and keep listening. All right, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, Adil, और बहुत सारी बातें प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमें करनी है। We will talk, of course, we'll talk about some economics के numbers। कल मजीद कुछ numbers आए और खासतौर से पाकिस्तान की तिजारत के हवाले से नंबर आए हैं, जिसमें अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, जैसा कि आजकल हर महीने ऐसा हो रहा है। तो जरा उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट जो है चीजों का हो सकता है। खेलों में ऑफकोर्स क्रिकेट और फुटबॉल का जिक्र तो आज होगा, कल प्रीमियर लीग के मैचेस कल भी खेले गए, आज रात भी होने वाले हैं, बल्कि आज तो बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है मिडनाइट के बाद, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेज आर्सेनल, वेरी नाइस। लेकिन टेनिस के हवाले से भी हम बात करेंगे। रिमेम्बर हमने चाइनीज स्टार फेंग शुई के हवाले से बात की थी कुछ दिनों पहले, उस हवाले से जो खवातीन टेनिस को रेगुलेट करने वाला है, चलाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक बहुत बड़ी कॉल ली है। सो या वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। आलमी तेल की कीमतों पर मेरी नजर थी और आलमी तेल की कीमतें अभी भी जो है वो अच्छा, देखिए कल तो गवर्नमेंट ने आपको पता चल गया होगा कि वो कीमतें ज़ाहिर नहीं बढ़ाई, और हमने उस पर बात कर ली थी कि गवर्नमेंट ने अपना GST बढ़ा लिया है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा ली है। और कल कुछ इस वेरिएंट के हवाले से, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार कोई डराने वाली बात नहीं की। देखिए, मैंने आपको जब से ये कोरोना वाला सीन शुरू हुआ है, मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हर चीज पे बहुत कंजर्वेटिव व्यू लेती है। सबसे कंजर्वेटिव व्यू आपको WHO का नजर आएगा, वो बेसिकली कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते कि देखें जी आपने तो कहा था कि ये मामला खत्म हो रहा है, ये तो अभी तक चल रहा है, तो वो हमेशा कहेंगे कि नहीं देखें जी ये मामला चल रहा है, बल्कि ये बढ़ सकता है, इसलिए आपको एहतियात की जरूरत है। ये बाई पॉलिसी WHO, इवन जब ये ओमिक्रॉन आया तो उन्होंने उसको एक पिक्चर जो प्रेजेंट की, जाहिर है दुनिया काफी उससे डर गई थी कि यार अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स इसमें कुछ खतरा है। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो बात समझ में आ रही है, और वो यही समझ में आ रही है, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, और मैं ब्लेसिंग का वर्ड इस इवन आई नो इट्स प्री मैच्योर टू यूज इट, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कल इस बात को एक्नॉलेज किया है कि ओमिक्रॉन जो है उसमें जो सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो उन्होंने अब तक कम नोट किए हैं, यानी यस इट मे बी मोर ट्रांसमिसिबल, ये फैलता जल्दी होगा, लेकिन इसमें सिम्टम्स अभी तक या वो जो डेथ वाला एलिमेंट है, सिवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, उन्होंने अभी वो कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो नोट की नहीं है. सो लग यही रहा था कि इन खबरों के बाद कुछ आलमी तेल की कीमतों में तेजी देखने में आएगी, लेकिन तेल की कीमतें एक्चुअली तो कल से भी कम बैठी हुई हैं इस वक्त, और 65-86 पे WTI हो रहा है. इवन ब्रेंट क्रूड जो है इट इज गॉन बिलो $70 टू अ बैरल. सो या नॉट बैड एक्चुअली. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डाल लेते हैं. आज का पहला मैसेज यूसुफ नवाब ने हमें किया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आदाब आपको भी. और बशीर अहमद साहब कहते हैं, सलाम प्यारे अदील भाई, आप इस साल पहले से ही बहुत सारे शोज में गैर हाजिर रहे हैं, मजीद गैर हाजिरी कबूल नहीं होगी. आपको शायद इस बात का इदराक नहीं कि इंतजार करना कितना मुश्किल काम है. देखें यार, मैं आपको बशीर एक बात बताता हूँ, मैं छुट्टियां जो करता हूँ ना वो कैजुअल छुट्टियां नहीं करता. एक आपको पता ना कंपनियों में एक प्रिविलेज लीव होती है, एक कैजुअल लीव होती है, नहीं जा रहा ऑफिस, नहीं जा रहा काम है कुछ, तो आप हार्डली आप इधर मेरी तबीयत खराब हो, जो कि आजकल मैंने एक्सपीरियंस किया आपको पता है पिछले चंद दिनों में, और इतनी खराब तबीयत के बावजूद यार मेरे ख्याल से मैंने एक या दो शोज ही छोड़े और काफी तकलीफ में शो किया मैंने आके यार. और लेकिन कल की जो मसरूफियत थी, परसों जो मैंने छुट्टी की थी यार, वो है अब एक जगह है जहाँ मुझे पहुंचना होता है सुबह 8:30 बजे. अब 8:30 बजे पहुंचने का मतलब ये है वो इवन दो इट्स जस्ट लाइक 10 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम हेयर वेयर आई हैव टू रीच, दैट्स वंस अ मंथ, एक महीने में एक दफा एक एक्टिविटी होती है. बट उसमें क्या होता है कि फिर मैं वहां पे 8:30 बजे पहुंचने के लिए मुझे फिर 8:15 बजे शो से साइन आउट करना पड़ेगा. अब 8:15 बजे शो पे साइन आउट का मतलब ये कि आई जस्ट केम एंड स्पोक फॉर 50 मिनट्स, उसमें भी एड्स लगा लें सब लगा लें, फिर तो गलत बात हो जाती है ना, ज्यादती हो जाती है. ओके चले जी. कौन है, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मैं आपको पिछले 2 वीक से सुन रही हूँ, आपका शो अच्छा होता है. चलें बहुत शुक्रिया. ये है हानिया. ओके बड़ा मुश्किल सा आपका नाम है, आप तो काफी तवील सा नाम, नाम क्या पूरा जुमला लिखा हुआ है आपने अपने नाम में. सो वट एवर योर नेम इज माई फ्रेंड, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. नजम साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं, अच्छा इनकी माशाल्लाह ट्विटर की 12th एनिवर्सरी है सर, बहुत मुबारक हो आपको अब्दुल रऊफ साहब. वकार अहमद साहब ने रहीम यार खान के सहरा की तस्वीरें जो है वो शेयर की हैं, वेरी नाइस एज ऑलवेज. वकार अहमद साहब जो है वो अच्छी तस्वीरें शेयर करते हैं, और अगर आपको याद हो आपसे कुछ अर्सा पहले हमने इनके काफी सारे फॉलोअर्स बढ़वाए थे, राइट 430 फॉलोअर्स वैसे ही बैठे हुए. ओके जी, ईशान बेग साहब ने खबर शेयर की है अबाउट सैमसंग स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान. जी हाँ, ये खबर परसों ये खबर आ गई थी, और कल ये खबर जो है काफी वायरल भी हो रही थी. और सैमसंग, आपको पता है सैमसंग के जो पाकिस्तान में पार्टनर्स हैं, ये जो लकी ग्रुप है ये है, इन्होंने कुछ अर्से पहले ये खबर भी, अब से कोई 3-4 महीने पहले की ये बात है, 4-5 महीने पहले की ये बात है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी कि जी दे हैव गॉट इनटू अ पार्टनरशिप विद सैमसंग FZE, और उनके साथ जो है ये मिडल ईस्ट का इनका हैविंग, और ये पाकिस्तान में फोन्स को असेंबल कर रहे होंगे. सो अभी ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान, अच्छा मुझे नहीं पता था कि फैसल सब्जवारी साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की, उन्होंने जो है वो इनकी फैसिलिटी का दौरा किया है, वो एक डेलीगेशन के साथ गए जहाँ पे जो लकी ग्रुप है उन्होंने उनको बताया कि जी इन्होंने सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में जो है वो शुरू कर दी. अगर आपको याद हो अब से एक दिन पहले ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अच्छी बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने जो है वो मोबाइल फोन्स अब बनाने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है इट हैज़ डबल टू 18.7 मिलियन, 18 मिलियन तकरीबन 19 मिलियन, इसका मतलब 1,90,00,000 पाकिस्तान ने जो है वो फ़ोन बनाए हैं. और लेकिन इम्पोर्ट जो पाकिस्तान की फ़ोनों की है वो अभी भी 45 मिलियन पे है. सो वी आर अ बिग कंज्यूमर ऑफ मोबाइल फोन्स, नॉट जस्ट द डेटा बल्कि मोबाइल हार्डवेयर एज वेल. इन फैक्ट पाकिस्तान में जो मोबाइल फोन की इम्पोर्ट है दैट इज सीन अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 15.5 मिलियन, सॉरी परसेंट, और 644 मिलियन यानी तकरीबन $65 करोड़ के मोबाइल फोन, डॉलर की बात कर रहा हूँ, इतने मोबाइल फोन पाकिस्तान ने जो है वो इम्पोर्ट किए हैं इन द फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने में. सो ठीक हो गया, दैट इज गुड, लकी ग्रुप इज डूइंग फाइन, ये सही काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं सैमसंग वाले यहाँ पे. अब कौन से फोन है वो किस नाम से है पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तानी मार्केट में तो खैर होंगे अवेलेबल जाहिर है, अभी एक्सपोर्ट वाली तो अपनी कोई बहुत बड़ी गेम है नहीं, लेकिन कौन से मॉडल्स हैं असेंबल्ड इन पाकिस्तान. और वैसे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि लोगों की परसेप्शन क्या होगी, लाइक यू आर बाइंग, आई मीन सैमसंग इज लाइक वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, और उनका अब असेंबल्ड इन पाकिस्तान फोन बाय कर रहे होंगे. सो पाकिस्तान में फिर ऐसे हो जाएगा ना, ये A52 है, ये थाईलैंड का बना है, ये चाइना का बना है, ये वाला पाकिस्तान का बना है, तो ये वाली गेम ना शुरू हो जाए कहीं इसमें. दैट रिमेन्स टू बी सीन राइट. All right, Fahim Ali Khan saab, thank you so much. It seems that Mr. Tareen is against this government. Why he's not curtailing imports, especially luxury vehicles? This deficit will take us to default. What's your take? Acha, luxury vehicles ke hawale se, yaar, mere khayal se to government ne, FBR ne, kal hi is hawale se announcement aa gayi hai ke ji luxury gaadiyon ki इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई जा रही है. जो CBU यूनिट होते हैं, CBU जो होते हैं कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, मुकम्मल तौर से तैयार शुदा जो यूनिट्स होते हैं, उनकी सेल पे जो है वो पाबंदी, उनकी इम्पोर्ट पे पाबंदी जो है वो लगाने की ऑलरेडी कल खबर तो मेरे ख्याल से आ गई है. आई हैवंट सीन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. और लेकिन यार मैं आपको बताऊं फहीम अली खान, आप CBU यूनिट पे लगा दें पाबंदी, लेकिन एक्चुअली आपकी CBU की इम्पोर्ट जो है, मैं कम्प्लीटली बिल्ड की बात कर रहा हूँ, ये जो आपको जापानी गाड़ियाँ नजर आ रही होती है ना यहाँ पे, उसमें ज़ाहिर है सस्ती गाड़ियाँ भी होती हैं, सस्ती गाड़ियाँ भी अब 14-15 लाख की सस्ती गाड़ियाँ होती हैं. एक ज़माना था कि 5-6 लाख में मिल जाया करती थी आपको, ये बहुत शुरू के ज़माने की ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें वही गाड़ियाँ भी हैं जो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ वाली गाड़ियाँ. अच्छा, इसमें मसला यह है कि जिन लोग, जो लोग ये 3-4 करोड़ वाली गाड़ियां चलाते हैं ना, वो इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं. गवर्नमेंट कहती है मैं 50 लाख की ड्यूटी लगा देती हूँ, वो कहते हैं ये लो 50 लाख रुपए, अबे 60 लाख ले ले मेरी तरफ से, तू 10 लाख और रख ले. वो इतने अमीर लोग हैं कि उनको समझ में नहीं आता हम पैसे कहाँ खर्च करें. सो वो और ड्यूटी गवर्नमेंट को दे देंगे, वो मसला नहीं है. तो इसलिए ये जो टैरिफ्स होते हैं ना यार, ये कोई जबरदस्त चीज़ नहीं होती है इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए. एक टेम्पररी फिनोमेनन होता है, वक्ती तौर से चीज़ें रुक जाती हैं इससे, बट इन द लॉन्ग रन import substitution is the solution. Jabaral. तो यार ये जो है ना, आप पाकिस्तानी कुल मिला के कोई 300-400 मिलियन डॉलर की मेरे ख्याल से पूरे साल की बात कर रहा हूँ उसकी ये वाली गाड़ियाँ आती हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है फहीम, सीरियसली मसला कुछ और है. ओके, मोहम्मद वकार साहब, थैंक यू सो मच. डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड. आपने अपना अकवाले जरनी में से, खजाने में से एक चीज निकाल के जो है ना वो हमको भेजी है, थैंक यू सो मच सर. इसके अलावा वकार अहमद साहब, बिल्कुल जी, एक जहाज क्रूज शिप पाकिस्तान आ गया है कराची. अच्छा, ये टूटने के लिए आया था, पता है ना आपको, ये सामान इस पर अच्छी तफसीली रिपोर्ट की है और ये मैं ना रीट्वीट भी करता हूँ. वकार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद मी दैट. और वो बेसिकली यहाँ पर आया है इधर तोड़ने के लिए, लेकिन मेरे सुनने में आया कि कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये तो अभी काबिल इस्तेमाल हालत में, तो आए इसको ऑपरेट करते हैं. तो पाकिस्तान में क्रूज लाइन ये चला रहे हैं. आपको पता है एक बार, अब से कोई 10-12 साल पहले की, 14 साल पहले ऐसे कोई टाइम हो गया है, बाबर गौरी साहब जब मिनिस्टर फॉर शिपिंग हुआ करते थे, वो ये एक कहानी हुई थी यहाँ पे, ये क्रूज लाइन वाली हुई थी, वो काफ़ी फ्लॉप आइडिया हुआ था, तबाहकुन आइडिया था यार, वो दुबई लेकर गए थे और एकदम फ्लॉप बिल्कुल. तो ये बहरहाल एक क्रूज लाइन आ गया है जिसकी कल सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन हो रही थी. चलो जी, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त पीर जहीर साहब को हम जरा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में. कुछ अरसे के बाद आप सोच रहे होंगे कि आजकल काफ़ी दिनों से उन्होंने प्रोग्राम में मैसेज नहीं किया, और उसकी रीज़न जो है वो ये थी, और मैंने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, और अपने हमने इज्तमाही दुआ भी की थी. पीर जहीर साहब की वालदा का जो है वो गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने गांव वगैरह गए हुए थे, और वहाँ पे इसकी वजह से प्रोग्राम में ज़ाहिर हमारी शिरकत नहीं कर पा रहे थे. ज़ाहिर ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही पर्सनल ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जो इंसान अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा होता है. बहरहाल जी, हमारी हमदर्दियाँ और दुआएँ आपके साथ हैं पीर साहब. अल्लाह ताला आपकी वालदा की मगफरत फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए पूरे खानदान को. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. चलिए से मैं एक्नॉलेज करता चलूं मेरे जो दोस्त हैं, बिकॉज सब बच्चे स्कूल पहुंचने वाले ना, रबा स्कूल पहुंचने वाला है. इसके अलावा मेरे पास अली की बर्थडे है आज, सुबैरा खान का मैसेज आया है. अली, हैप्पी बर्थडे टू यू यार, आई होप यू डूइंग फाइन एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्रेंड. Enjoy your birthday, okay? Atau Rahman sahab, thank you so much. And then my dost Mohsin Akbar program sun rahe hain. Kehte hain, thanks to engineer Babu for playing Gulo mein Rang Bhare. Bada achha gana chala hai subah bhai. Kya acha, haan, ye laga hua to hai. 7:19 pe chala hai. Zabardast. Ishal Varsi is listening to me. Ishal, good morning to you. And then we have got मोहम्मद वकार ने खबर शेयर की है. द ओमिक्रॉन वेरिएंट अपीयर्स टू बी सुपर माइल्ड म्यूटेशन विद कोविड डेथ रेट इन साउथ अफ्रीका नॉट जंपिंग. अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, और मैं तभी बार बार ये कह रहा हूँ, आई मीन विद माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लाइक टच वुड, कि ओमिक्रॉन कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. अच्छा पता है कल हमारी ना वालदा को हमारी कजन ने मैसेज किया कि पता है आपको अगर किसी को ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट हो जाए ना वो 15 मिनट में मर जाता है. ओ भाई अम्मी परेशान हो गए भाई, भाई बच के रहो, कैसे बचूं मैं. तो भाई ये इस तरह की फजूल बातें ये मार्केट में फैल रही हैं, तो आप क्योंकि समझदार हैं तो इसलिए आप ना इस तरह की बातें सुनेंगे ना इस तरह की बातें फैलाएंगे. ऑलराइट, इज इट या वेल डन, जबरदस्त. एंड देन वी हैव गॉट शामी रनाजान. लियोनेल मेसी के हवाले से बहुत खुश हैं, उन्होंने 7वीं बार बैलून डॉग. यार इस बार बेमांडी हुई है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को फुल टाइम. यार इस बार मेसी का नहीं बनता था यार जीतना यार. मेरे ख्याल से लेवनडॉस्की जो है ना उसका सीजन ओवरऑल ज्यादा अच्छा रहा है. ये मेसी अपने रेपुटेशन पे मिल गया उसको, और ये जिस तरह का कोट पहना हुआ था शायद उस चक्कर में मिल गया उसको. ऑलराइट, जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. देखते हैं जी अखबारात क्या बात करते हैं. पंजाब गवर्नमेंट विल अमेंड लॉ टू यूज ईवीएम इन लोकल गवर्नमेंट पोल्स. ओके, यानी पंजाब गवर्नमेंट अब सीरियस हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने के हवाले से. और वो अपना जो बेसिकली ये बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान में एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. सिंध में इसमें कंट्रोवर्सी आ गई है बिकॉज सिंध हुकूमत ने एक कानून और पास कर दिया है जिससे बल्दियाती इदारों के इख्तियारात में मजीद कमी हो गई है. वैसी लेम डक किस्म का पाकिस्तान में सॉरी सिंध में ये बल्दियाती निज़ाम है उसको और वीकन कर दिया गया है, जिस पर आपको ये भी अंदाजा है कि पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी शोर मचा रही हैं. और कल जमात इस्लामी ने इसमें कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धरना वगैरह भी जो है वो किया, और उस पर ट्रैफिक उन्होंने जैम किया, और लेट्स सी उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट वांट्स गवर्नमेंट टू कंपनसेट फैमिलीज ऑफ मिसिंग पर्सन. ओके, लापता अफराद जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का. चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं जिसमें ये सुनवाई की जा रही है लापता अफराद की फैमिलीज के हवाले से. जबरी गुमशुदगी जुर्म, हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी, ये उन्हीं का किया कराया है. ओके, अच्छा जंग की आज की लीड जो है वो भी यही है. पंजाब बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर वजीर आला ने लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी, इलेक्शन कमीशन का फैसले से इनकार. भारत में पेट्रोल 18 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया. अच्छा, नई दिल्ली हुकूमत ने वैल्यू एडेड टैक्स कम करके 19 रुपए 40 पैसे कर दिया. यार 19.40 कर दिया. अच्छा यार ये पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये मैं देख रहा था सुबह हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ना, ओ यार इंडिया छा गया ये वो. ओ भाई, अब से 3 हफ्ते पहले तक 55% वो GST ले रहे थे. आपको समझने वाली बात ये है कि इंडिया में इलेक्शन सीजन शुरू हो रहा है. नो नो, फेडरल वहाँ पे वफाकी इंतखाबात नहीं बल्कि वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन शुरू हो रहा है, और नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त काफ़ी प्रेशर में हैं. एक तो फार्मर मूवमेंट में उनको शिकस्त हुई है, दूसरी इंडिया में एक नए पॉलिटिकल फिनोमिनन जो है ना वो तेजी से जर पकड़ रहा है, एंड दैट इज ममता बैनर्जी. इन पे आगे चल के प्रोग्राम में कभी हम जरूर बात करेंगे. एक्सप्रेस की आज की लीड है शहरी लापता हुआ तो वजीर आजम को जुर्माना, वजीर आजम और काबीना को जुर्माना होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. क्या है जी खबर, इमरान खान कहते हैं गंदम चीनी आटा पेट्रोल की स्मगलिंग मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हंगामी इकदाम करें. स्मगलिंग से मस्नूई किल्लत पैदा हुई और कीमतें बढ़ जाती हैं. ठीक है जी, बैन अलाक्वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालिबात के साथ इज्तिमाई ज्यादती का इंकशाफ. उफ, तालिबात हॉस्टल का वक्त ख़त्म होने के बाद बाहर निकलती हैं. ओहो यार, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये इस्लामाबाद की, अल्लाह खैर करे जी, क्या मामला है जी. ये आज एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आई हुई है, और इनके अपने ये रिपोर्टर हैं तो इनकी अपनी फाइल की हुई है रिपोर्ट एक्सप्रेस की, तो आप इसकी तफसील अगर पढ़ना चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं. ओके, इसके अलावा क्या है जी, एवन फील्ड जाली अकाउंट्स केस में नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद मुस्ताफी हो गए हैं. ठीक हो गया जी. और इसके अलावा सदर ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन समेत 32 बिल्स पर दस्तखत कर दिए हैं, सहाफी जिम्मेदारियां पूरी करें. अलवी साहब का ये कहना है. फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में प्रेस आज़ाद नहीं है तो इसका मतलब कहीं पर भी नहीं है. आप जानते हैं प्रेस तंजीमों ने इस कानून की काफ़ी हम आवाज़ होके इसकी जो है वो काफ़ी मुखालफत की है. एक तो इसमें ज़ाहिर है जो हमारे मीडिया के जो आम तौर से टीवी चैनल्स और ये प्रेस के जो ओनर्स हैं उन पे काफ़ी जिम्मेदारियां हुकूमत ने डाल दी हैं. आपको पता है यहाँ महीनों महीनों उनको तनख्वाहें वगैरह नहीं मिल रही होती हैं. और दूसरी चीज़ जो हुई है वो बेसिकली दैट इज़ अबाउट फेक न्यूज़, अनसब्सटैंशिएटेड अनकन्फर्म्ड ज़राए के मुताबिक जो खबरें उसके हवाले से गवर्नमेंट ने जो है कुछ चीज़ें टाइटन करने की कोशिश की है. लेट्स सी क्या होता है. अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक और ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. और चलें जी जल्दी से खेलों के हवाले से बात करते हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश. पाकिस्तान टीम चिटाग्रॉम के बाद अब पहुंच गई है ढाका, जहां पे परसों से दूसरे टेस्ट मैच का जो है वो आगाज हो रहा है. आज पाकिस्तान टीम जो है वो शेरे बंगाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी. और जब कहते हैं जी कि आज ये भी गौर किया जाएगा, आपको देखिए मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि टीम में एक तब्दीली, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक तब्दीली जो है ना वो टीम में हो सकती है. और मैंने ये कल भी बात की थी कि ढाका की विकेट जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ साबित होगी फ्रॉम चिटाग्रॉम की विकेट. और यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन ज्यादा हो सकता है, बॉल ज्यादा ग्रिप कर सकती है, जिसकी वजह से स्पिनर्स की अफादियत वन ज्यादा होगी. और दूसरा तेजुल इस्लाम जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हमेशा से लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो पाकिस्तान की कमजोरी रही है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. शेर बंगला स्टेडियम में बाय द वे जैसे कहते हैं कि ये बांग्लादेश का रिकॉर्ड इज एक्चुअली नॉट दैट बैड. और पिछले 7 में से 5 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश जीतने में कामयाब हुए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इस मैदान में. अगर आपको याद हो, आपसे मेरे ख्याल वो 3-4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है. इन्होंने एक दो और बड़ी टीमों को जो है ना ठिकाने लगाया स्टेडियम में. तो ये आसान मैच नहीं होगा, बट लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. वैसे भी आपको पता है कि जी नई अब टेस्ट रैंकिंग वगैरह भी सामने आई है. शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह Top 5 में जगह बनाने में कामयाब हो गए. ही इज ऑन नंबर 5 बाय द वे. हसन अली का भी आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त फॉर्म इस साल चल रही है. हसन अली नंबर 11 पे आ गए हैं. सो ही इज जस्ट 1 step क्लोज फॉर मेकिंग इट टू द टॉप 10. और इसके अलावा बाबर की जहां तक बैटिंग की बात करें, तो बाबर ने पहले टेस्ट में खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो इसकी वजह से उनकी कारकर्दगी में उनकी रैंकिंग में भी जो है वो कुछ दर्जों की कमी. स्टिल इन टॉप 10 बाबर, बट स्टिल ऑलराइट. जल्दी से अच्छा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से बात करने से पहले जरा कायदे आजम ट्रॉफी का जिक्र करते चलें. भाई कल का दिन रहा हैदर अली के नाम, और हैदर अली ने कल जो है वो डबल सेंचुरी स्कोर की. वाह क्या बात है जी. ये बेसिकली सेंट्रल पंजाब के खिलाफ नॉर्दर्न की जानिब से आप जानते हैं ये खेलते हैं हैदर अली, और इन्होंने तेज रफ्तार काफी बर्क रफ्तार जो है ये डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई है. और उनकी इस इनिंग में 206 रन की जो इनिंग थी उसमें 27 चौके और 4 छक्के इसमें शामिल थे. वेल डन टू हिम. ऑलराइट. इसके अलावा शान मसूद ने भी जो है कल 87 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की है. सो या लॉट्स ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड इन कायदे आजम ट्रॉफी. ओके, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज. पीसीबी की तरफ से सुनने में आया है जी, एनसीओसी से दरख्वास्त की गई थी कि स्टेडियम्स को पूरे भरने की इजाज़त दी जाए. इससे पहले जो होने वाले मैचेस थे आपको पता है कि उसमें पार्शल टिकट जो है वो सेल करने की बात की गई थी. खैर वो भी आपको पता है बैड लक ही रही. मैचेस तो खैर ज़्यादा हो नहीं पाए, ज़्यादा क्या हो ही नहीं पाए. तो पीसीबी की दरख्वास्त पर जो है वो एनसीओसी ने स्टेडियम्स को पूरा भरने की इजाज़त दे दी है. और उसमें कहा यह किया गया है कि जी सिर्फ वही लोग लेकिन मैचेस देख सकेंगे जो कि फुली वैक्सीनेटेड होंगे. 12 साल से बड़े जो हैं बच्चे भी अहले खाना के अमराज स्टेडियम में लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, लेकिन जिनकी वैक्सीनेशन हुई भी होगी. 12 साल से बड़ी बच्चों की भी वैक्सीनेशन आपको प्रूव करना पड़ेगा. अच्छा जी, मास्क लगाना होगा खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों नहीं तमाशाइयों को. और डड़ा बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल ये वो. अच्छा जी, कहते ये हैं कि ओ टिकटों की फरोख जो है वो कल से शुरू होने का इम्कान है. सबसे महंगा टिकट जो है वो 1000 रुपये का रखा गया है. 500 और 250 रुपये के टिकट जो हैं वो भी दस्तियाब होंगे. ओके जी, आप जानते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो पहले कराची में एक्शन में नज़र आएगी. 3 T20 मैचेज और इतने ही एक रोज़ा मैचेज जो हैं वो खेले जाने हैं. एंड 9 दिसंबर को इनकी टीम कराची पहुंच रही होगी. ऑलराइट जी, कराची किंग्स के हवाले से बात करते चलें. पीएसएल की साबिक चैंपियन टीम. वैसे खैर एनीवे पीएसएल की सब टीमों के बारे में ही आप एनीवे चलें, हमें लाहौर कलंदर की नहीं कोई बात नहीं कर रहा, उनके नाराज हो जाते हैं दोस्त हमारे, ठीक है. अच्छा जी, तो कराची किंग्स ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है. एंड आई थिंक काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि जी कराची किंग्स जो है वो अपनी कप्तानी में तब्दीली करने वाला है. और हमेशा ये ताना दिया जाता था कि यार बाबर आजम तो अपनी फ्रेंचाइज टीम का भी कप्तान नहीं है, आपने उसको पाकिस्तान का कप्तान बना दिया. सो बाबर आजम साहब जो है वो अब कराची किंग्स के भी ऑफिशियली ही इज द कैप्टन नाउ. और ये जो है अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो गई है कराची किंग्स के ओनर्स की जानिब से भी और टीम की जानिब से भी. और इसके अलावा इमाद वसीम ने जो है वो अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जो कि आउट गोइंग कैप्टन है, और बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट कैप्टन हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू हेडन की खिदमात जो है वो हासिल की जा रही हैं पीएसएल के अगले एडिशन के लिए. कराची किंग्स उनकी कोचिंग के हवाले से उनकी खिदमात से जो है वो उनको अवेल करेगा. वैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के फुल टाइम कोच बनने से पहले मिकी आर्थर जो है वो भी काम कर रहे थे विद कराची किंग्स. सो यू नेवर नो. ओके, और कोई खबर क्रिकेट के जल्दी से वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के टेस्ट मैच के बारे में भी आपको बता रहे चलें. इस वक्त सिचुएशन ऐसी है दैट श्रीलंका वेस्ट इंडीज, श्रीलंका की दूसरी इनिंग चल रही है. कल जब खेल खत्म हुआ गाल में तो फिर उनके 46 रन पर दो खिलाड़ी आउट हो चुके थे. दे स्टिल ट्रेल बाय 3 रन और आप कह सकते हैं दैट वेस्ट इंडीज अगर आज सुबह जल्दी विकेट निकालने में कामयाब हो जाता है देन I think this match is on. West Indies ये मैच जीत भी सकता है, इसमें खैर कोई शक नहीं है. Okay. जाते जाते जरा फुटबॉल के स्कोर जल्दी से मैं आपको बता चलूं. कल रात जो है वो फुटबॉल मैचेस जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के खेले गए उसमें कल कामयाबी हासिल की चेल्सी ने. उन्होंने वॉटफोर्ड को शिकस्त दी 1-2 में 2 गोलों से. इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो अवे फ्रॉम होम एस्टन विला को शिकस्त दी. और इनके स्ट्राइकर बर्नांडो सिल्वा ने जो है वो कल सुना है जी वो कल काफी जबरदस्त किस्म का जो है वो गोल स्कोर कर दिया. आई हैवन सीन द वीडियो येट लेकिन मैं आई वाज रीडिंग अबाउट इट, पता चला जो कि वंडर गोल उन्होंने स्कोर किया है. और एक और जो मैच कल खेला गया और काफी सारे मैचेस कल खेले गए थे 12, इसमें एक मैच जिसे मर्जी साइड डर्बी कहा जाता है जिसमें लिवरपूल का मुकाबला एवर्टन होता है. सो ये एवर्टन के होम ग्राउंड पे ये मैच हो रहा था और लिवरपूल ने इसमें 1-4 में 4 गोलों से कामयाबी हासिल की. यार एक जमाना था कि ये बड़ा अच्छी राइवलरी हुआ करती थी एवर्टन वर्सेस लिवरपूल, लेकिन लिवरपूल पिछले चंद सालों से जिस तरह खेल रहा है ये तो इन्होंने इस बकरी बना दिया बिल्कुल इन्होंने एवर्टन को सीरियसली. अच्छा जी मोहम्मद सलाह ने जो है वो 2 गोल स्कोर किए, खोटा ने 1 और हेंडरसन ने 1 गोल स्कोर किया. तो 1-4 से कामयाबी हासिल की. आज के मैचेस के हवाले से हम बात करते चलें. आज रात 12:30 टॉटनम जो है विल बी होस्टिंग ब्रेंटफोर्ड, लेकिन आज 12:15 जो है दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला होने वाला है. दे आर गोइंग टू होस्ट आर्सेनल देयर और आर्सेनल की फॉर्म जो है वो जरा अच्छी खासी चल रही है. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि रॉल्फ रैंगनिक जो के नए इस वक्त मैनेजर आए हैं टेम्पररी, उनको एक सीजन के एंड तक का असाइनमेंट दिया गया है. वो आज पहली बार एक्शन में जो है वो नजर आने वाले हैं. और आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड की डर्बी जो है ये अच्छी रही है, ये अच्छे मजेदार इसमें जो है मैचेस होते हैं. लेकिन रिसेंट ईयर्स में हमने बहरहाल देखा है कि आर्सेनल ने कुछ किया है, पुट अप किया है फाइट. यार आई थिंक इट्स बिन सम वाइल एक्चुअली. मैं पिछली हिस्ट्री मैचेस देख रहा हूँ, 0-0 ड्रॉ हुआ, उससे पहले 1-0 आर्सेनल जीता, फिर 2-0 आर्सेनल जीता, फिर 1-1 ड्रॉ हुआ, फिर 2-0 आर्सेनल जीता. एंड जनवरी 2019 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफ ए कप में आर्सेनल को 1-3 से शिकस्त दी थी. लेकिन प्रीमियर लीग में एक्चुअली वी हैव टू गो बैक टू 2018, दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट आर्सेनल एट होम, दैट वाज 2-1. सो इंटरेस्टिंग. ऑलराइट चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह क्या बात है, जबरदस्त जी, मजा आ गया. बेहतरीन गाना. ऑलराइट ग्रेट. 8:24 सनराइज शो विद मी अदील. खिलजी साहब का मैसेज आया है और जबरदस्त सर क्या तस्वीर आपने भेजी है, बहुत ही आला. पेशावर के नमकीन गोश्त की जो है वो इस वक्त सीन यहाँ पे नजर आ रहा है. सो ग्रेट. राहिल उमर, यार मैंने अभी मैसेज देखा राहिल, लेकिन बेटे का आपने नाम लिखा नहीं, सो अपोलॉजीज, आई कुड नॉट इंक्लूड द मैसेज. एंड देन मुद्दसर रफीक, यस डू यू डू इनफॉर्म ऑन ट्विटर अबाउट योर एब्सेंस दो लेट, फॉगी सलाम फ्रॉम लाहौर. इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बिल्कुल. ओके, जिसके अलावा मुलाइटी का इस्तेमाल किया करें, गला खराब हो तो मोटरवेज क्लोज फ्रॉम ठोकर. अली डार साहब कहते हैं जी हाँ, मोटरवेज क्लोज, फिर दोबारा थिक फॉग है, इस बार फॉग है स्टार्टेड वे टू अर्ली. बिलाल सईद कहते हैं टुडे इज मूसाज रेस डे एट स्कूल, प्लीज विश हिम बेस्ट ऑफ लक. मूसा अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे लेकिन प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू हिम. इनफैक्ट इंशाल्लाह बाय द टाइम ही विल बी बैक, ही मस्ट हैव वॉन समथिंग. फैनाज नवीद, आपके शो में पहले मैसेज करने का टाइम कब स्टार्ट होता है? यार हमारे कुछ दोस्त तो रात सोने से पहले मैसेज करके सो रहे होते हैं, लेकिन हाँ 4-4:30 बजे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद से, ऐसा होता है सिलसिला. आज थोड़ा सा लेट आया. डॉक्टर फरा थैंक यू सो मच, कहती हैं फॉर पीपल हु आर हैविंग अ बैड थ्रोट आपने कावे की तस्वीर जो है वो भेजी है. चलें जी, थैंक यू सो मच. जज्बा काउंट करता है तो मैंने फील कर लिया बिल्कुल, और मैं भी अपना सुबह ना अपना स्पेशल कावा बना के वो पी कर आया हूँ, तो उसके बाद से है थोड़ा आराम है, बेहतर है. लेकिन ये अरे मैं ज़रा थोड़ा सा इस बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ अपने देसी इलाज के हवाले से भी. इमरान अहमद साहब जो हैं वो मोबाइल फोन्स के हवाले से बात करते हैं, कहते हैं हाउ मेनी ऑफ लिसनर्स विल प्रेफर पाकिस्तानी असेंबल्ड मोबाइल फोन व्हेन अवेलेबल इन मार्केट, प्लीज मेक अ सर्वे. आई वुडंट प्रेफर ऑनेस्टली स्पीकिंग. वो ये कहते हैं जी पाकिस्तानी असेंबल्ड फोन वो प्रेफर नहीं करेंगे, एंड ही वुड स्टिल प्रेफर टू बाय इंटरनेशनली जिसे कहते हैं कि असेंबल्ड फोन को वो प्रेफर करेंगे. सो व्हाट डू यू गाइस से अबाउट दैट? दैट इज़ आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. आपके पास अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो, आपको पता है कि खैर हुकूमत ने काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि मोबाइल फोन्स अगर बाहर से इम्पोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन अगर ऑफिशियल चैनल के थ्रू भी बाहर से आ रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर दैट नाउ सैमसंग फोन्स, मुझे नहीं पता सैमसंग अपने कौन से ग्रेड और कौन से मॉडल तक के फोन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर लकी ग्रुप के साथ कर रहा है, लेकिन वो वाले फोन्स जो पाकिस्तान में लेट से A52, मैं तो यहाँ पे सैमसंग फोल्ड और गैलेक्सी वगैरह की तो मैं बात भी नहीं कर रहा जो उनकी हायर एंड उनके ब्रांड्स हैं इनके टॉप, मैं वो फ्लिप वाला एंड फोल्ड एंड स्टफ जो उनके आए हुए, मैं तो एक नॉर्मल वाले मोबाइल फ़ोन की जो है ना वो बात कर रहा हूँ कि वो फोन जगह लेट से A52 पाकिस्तान में बन रहा है, सो क्या उसका इक्विवेलेंट फोन बाहर से अभी भी सैमसंग पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है? मैं ग्रे चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वील हैव टू क्लोज द डोर देयर. सो आई थिंक ये आई एम श्योर जब लकी ने इनके साथ डील किया होगा, साइन किया होगा, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म होगा उसमें ये बात उन्होंने अग्री करवाई होगी, अदरवाइज तो इट डजंट मेक एनी सेंस यार, इट डजंट मेक एनी सेंस. आई मीन वही गाड़ी पाकिस्तान में लेट से टोयोटा करोला मुझे उसी प्राइस में पाकिस्तानी असेंबल्ड और थाई असेंबल्ड मिल रही है, 90% पीपल विल गो फॉर द थाई असेंबल्ड कार, या आई थिंक मे बी 100% विल गो फॉर दैट. सो वहाँ पे आपको ना फिर टेरिफ्स के थ्रू उन दरवाजे को बंद करना पड़ता है. सो आई थिंक दैट्स द थिंग. सो या राइट ओके जी. एंड मिदत ने एक मोबाइल फ़ोन के ब्रांड का नाम लिया है और कहते हैं कि जी दे आर सेलिंग पाकिस्तान मेड फोन्स, गुड क्वालिटी, क्वाइट गुड क्वालिटी इन 20,000 दे आर ऑफरिंग, इन 20,000 दे आर ऑफरिंग 35K CBU यूनिट फॉर यूजर्स. ओके ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और या ये कंपनी बना रही है फोन, और आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग, आई होप दे आर डूइंग वेल एंड फाइन. और जी शाहीन ताहिर एंड शी इज बैक इन लाहौर, कहती है ब्यूटिफुल वेदर इन लाहौर एंड बैक आफ्टर 2 days इन कराची, माई फादर इज डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आफ्टर ही गॉट ऑपरेटेड. चैलेंज गुड टू हेयर अबाउट योर फादर, आई होप कि वो जल्द रिकवरी भी इनकी इंशाल्लाह हो जाएगी. डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब वालेकुम अस्सलाम सर. एंड देन वी हैव गॉट लोन शमीम जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं बांडीपोरा में, शमीम अहमद साहब, और कहते हैं इट्स 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर. सर आप इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं, आपको पता होगा ना इस बात पर कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं, आई एम प्रीटी श्योर. ओके जी लोन शमीम साहब ये भी कहते हैं कि यू आर डूइंग अ ग्रेट शो, की थैंक यू सो मच सर, तारीफों का बहुत शुक्रिया. एंड बेमांटी वॉट अ वर्ड फ्रॉम आर चाइल्ड हुड मेमोरी, मेनास कहती हैं. ऑल राइट बिल्कुल ऐसे ही है जी. एंड देन फैजान परवेज साहब ज़बरदस्त अपनी गाड़ी में चाय या कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ 107.4 लगा हुआ है, क्या बात है. दानिश कहते हैं अदील भाई योर व्यू ऑन हानिया प्रेजेंस इन आसिम अज़हर्स कॉन्सर्ट इन कराची. यार ये क्या डिस्कशन है भाई, मुझे पहले इसका कुछ सियाक व सबाक बता दें. नहीं तो क्या आसिम अज़हर ने कोई बैनशन लगाया हुआ है? ये हानिया आमिर जो मॉडल है मेरे ख्याल से और एक्ट्रेस जो है, तो बैनशन लगाया हुआ, उन्होंने कोई पाबंदी लग गई है उन पर, क्या हो गया यार? ये मुझे ना ऑनेस्टली शोबिज एंटरटेनमेंट ये मेरा फोटे है नहीं यार. आप पेंग शुई के हवाले से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं खबर शामिल करना भूल गया कि वर्ल्ड जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन है उन्होंने खवातीन के तमाम इवेंट्स चाइना में जो हो रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया है फिलहाल, बिकॉज पेंग शुई के हवाले से अभी तक उनको सेटिस्फाई करने में वो अभी तक सेटिस्फाई हुए ही नहीं है, जो WTA के जो अरबाब इख्तियार हैं और दुनिया भर की जो टेनिस फ्रेटर्निटी है उनको अभी तक परेशान है कि यार वेयर इज पेंग शुई, किधर है ये. मैंने इस पर बात की थी याद है, रिमेंबर इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं. लेकिन अब हानिया आमिर वॉट इज शी डूइंग इन आसिम अज़हर्स कॉन्सर्ट, यार मुझे इसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं पता, तो मुझे या तो समझा दें बैकग्राउंड, इसका कोई कानूनी पहलू है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी नजर डाल लेता हूँ, लेकिन तफसीली बात मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है। ऑलराइट, अनीक अहमद साहब कहते हैं आई बिलीव द फर्स्ट स्टेज सैमसंग एंड लकी विल मेक लो एंड मीडियम रेंज टेक मोबाइल, मीडियम ओके, हाई एंड मोबाइल मे बी इन द लेटर स्टेज। तो कौन से, वही है, देखिए वही बात आती है कि लो और मीडियम रेंज भी बना रहे होंगे बट कोई मॉडल्स होंगे ना सर्टन, तो क्या वो मॉडल्स का दरवाजा फिर बाहर से आने में इम्पोर्ट पे जो है वो बंद हो जाएगा, दैट रिमेंस टू बी सीन। ठीक है जी, एंड देन वी हैव गॉट अयाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर, व्हाइल वी आर ऑन टूर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। अयाज भी मकूजा कश्मीर प्रोग्राम हमारा सुनते हैं और क्या बात कर, जबरदस्त तस्वीरें भेजता है भाई, बहुत ही खूबसूरत खींच के वहां से। इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं 2-3 दिन से छाट छाट के गाने निकाल रहे हैं, भाई वाह भाई वाह, जबरदस्त। ऑलराइट, एंड देन वी हैव गॉट वन मैन आर्मी, ही सेज भाई आज तो भीगा भीगा सा दिसंबर सॉन्ग हो जाए। यार वैसे मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, आई डोंट लाइक दैट सॉन्ग, मुझे वो गाना नहीं पसंद, मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो सीरियसली। ऑलराइट, दैट वाज लाइक विंटेज आतिफ असलम मैन, जबरदस्त, द रियल ओरिजिनल स्टफ मैन, जबरदस्त, दैट वाज द दिल हारे, एंड होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग। और बिल्कुल जी, आज की प्लेलिस्ट मैं भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और रहमान खिलजी साहब की तरह मैं भी अपनी आवाज जो है ना उसमें फुल आवाज में जो है ना उस पर गाने गा रहा हूँ, वैसे सीरियसली। चलें जी, ग्रेट, ओके जी। बाकी अनीक अहमद साहब ने तस्वीर शेयर की है, अफगानी नमकीन बोटी ट्राई करो एट हाईवे, फिट है। यार मैंने एक जमाना था, हम लोग अलासिफ स्क्वायर जाया करते थे, उसके अंदर जो पूरा काबुली सीन जो अंदर ऑन है फुल टाइम, आपको पता है वो भी, खैर बड़ी उस अपार्टमेंट की भी एक बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है, लेकिन बहरहाल फिर भी उससे अगर कोई अच्छी चीज हुई है वो ये हुई थी कि वहाँ नमकीन बोटी मिला करती थी, और अपनी यूनिवर्सिटी के जमाने में इट यूज्ड टू बी अ वेरी रेगुलर फीचर हमारा, कि वहाँ जाके उधर वही फर्शी नशस्तों पे बैठ के और बोटियां आए जा रही हैं और चले जा रहा है और खाना चले जा रहा है और फिर बाद में कावा आ रहा है एंड ऑल एंड स्टफ। आई डोंट नो अभी भी वहाँ होता है या नहीं, बीच में हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों ने जाना बंद कर दिया था वहाँ पे। इमरान कुरैशी साहब सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा शुजात अंसारी साहब कहते हैं सलाम अदील भाई, प्लीज गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लोकल गवर्नमेंट लॉ अमेंडमेंट बाय सिंध गवर्नमेंट। देखिए जी, पाकिस्तान में बाय डेफिनेशन आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट को तो अलग से उनको लताड़ा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जनरली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दे डू नॉट लाइक द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, दे डू नॉट लाइक इट। देखिए मान लें बात, कोई जितनी भी बड़ी बातें कर ले, जो कुछ भी कर ले, पाकिस्तान में आखिरी आदमी जो मुखलिस था लोकल गवर्नमेंट तक में साहब, वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे और वो चले गए, ठीक है जी, उनका रोल खत्म, वो अपना एक सिस्टम देकर चले गए थे। और मुझे यार जनरल मुशर्रफ साहब कहा करते जाने से पहले कि मैंने आइन में तब्दीलियां कर दी हैं, ये चेंज नहीं हो सकता, ये जो है ना ये सिस्टम कोई चेंज नहीं करेगा। उन्होंने कहा उनको क्या पता था उनके पास जरदारी साहब आएंगे, उन्होंने आईनी चेंज कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। क्योंकि उस जमाने में क्या था कि लोकल गवर्नमेंट के जो निजाम था उसकी जिम्मेदारी जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट अपने आप मैनेज करती थी, यहाँ पर उन्होंने प्रोविंशियल को दे दिया, भाई हर सूबा अपना एक निजाम बनाए, ठीक है जी, अपनी असेंबली से बिल पास कराए और अपना निजाम जो है ना वो बना दे। हाँ, आईन में एक आर्टिकल 141 डाल दिया गया, ए बी सी क्लॉज उसकी, जी इनको एम्पावर्ड लोकल बॉडीज जो है ना दी जाएंगी, आपके आईन का हिस्सा है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेदारी है आप समझ सकते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो इस वक्त ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है नहीं इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो अजीबो गरीब हरकतें हो रही हैं लोकल गवर्नमेंट्स के नाम पे। मैं तो अक्सर ये पूछता था, मैंने कहा भाई किसी को पता भी है लाहौर का नाजिम कौन है, कोई है इस्लामाबाद में भी कोई नाजिम सुना होता था ये वो, बिकॉज यार सिंपल सी बात है, मैं अगर वजीर आला पंजाब हूँ और मुझे ये पता चल जाए कि यार लाहौर का मेयर जो है एम्पावर्ड मेयर मेरी पार्टी का नहीं होने वाला, वो तो आना ही नून लीग का है, तो फिर मैं क्यों गवर्नमेंट चलने दूंगा। या सिंध में उनको पता है कि यार मैंने यहाँ पे अगर ऑनेस्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन और एम्पावर्ड मेयर जिसके पास सारी प्रॉपर्टी ये वो जमीनों का ये सारी डीसी शीसी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर एंड ऑल, सो अगर उसको ये हुकूमत चली गई और वो MQM का आ गया या PTI का आ गया कुछ आ गया, तो कराची तो मेरे हाथ से निकल गया और कराची तो है सोने की चिड़िया, तो ये तो भाई पाकिस्तान के हर सूबे का मसला है, कोई नहीं चाहता एम्पावर्ड, ये एक मुसीबत इनके लिए इनको बांधी गई है, मुशर्रफ साहब छोड़ के चले गए हैं ये लोकल गवर्नमेंट वाला निज़ाम ये, और बाकी सिचुएशन जो है ना वो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में तवातुर के साथ एप्लीकेशनें फाइल की जा रही हैं, पिटिशनें फाइल की जा रही हैं, खुदारा इम्प्लीमेंट करवाएं इस निज़ाम को, खुदारा आइन की इस आर्टिकल को लेटर एंड स्पिरिट में करवाएं। सो जो सिंध, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड इतनी ज़्यादा है नहीं इस केस में मेरे ख्याल से, वो नस्ला टावर वगैरह वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। सो ये जो मामला है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, सिंध गवर्नमेंट ने जो किया है ये इसी माइंडसेट की अक्कास है। आपको पता है जो गवर्नमेंट आती है अपने बंदे ला के, शहबाज शरीफ साहब आपको पता है उनका मशहूर था जी पूरा सिस्टम निज़ाम उनके बंदे चला रहे थे वहाँ पे, सिमिलरली पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे ये सिस्टम चलाता है उनका, तो वही सिस्टम जो है उसके लोग यहाँ बैठे हुए और वो सूबा चला रहे हैं. सो दैट्स द थिंग. इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? देखिए, सिर्फ इसमें एक जो हैरानी और अफसोसनाक बात है वो ये है कि तीन पार्टियां इस मामले पर शोर कर रही हैं. जमात इस्लामी, PSP एंड चार पार्टियां, PTI भी कराची, इवन दो कभी कभार शोर करती है कराची के हवाले से, PTI भी आ गई और MQM आ गई. यार तुम लोग अगर कराची के साथ मुखलिस हो, इनमें से कोई कराची के साथ मुखलिस नहीं है, बिकॉज अगर ये लोग कराची के साथ मुखलिस होते, दे ऑल वुड हैव बीन ऑन वन प्लेटफॉर्म. इनके दरमियान मैं एक प्रीफिक्स यूज करने वाला था लेकिन मैंने यूज नहीं किया, अच्छा हुआ, शो बैन हो जाता मेरा. लेकिन इनके दरमियान जो है वो इतनी वो है सियासत है इन लोगों के दरमियान, कि ये चार पॉलिटिकल पार्टी जो ये समझती हैं कि यार हम कराची के वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर एक साथ कंबाइंड मूवमेंट चलाएं, कौन रोक रहा है तुमको यार? लेकिन नहीं, हर एक को सियासत खेलनी है कि अगर मैं अंडरमाइन इसमें हो गया तो फिर तो ये वोट उनको चला जाएगा या फलाने को वोट चला जाएगा. भाई तुम मुखलिस कराची के साथ हो या फिर अपने वोट बैंक से हो? तो ये जो है ना, ये मसला. इसलिए मैं अभी सुना है जी कि वो हाफिज नईमुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है मुस्तफ़ा कमाल के साथ, लेकिन क्या मुश्तरका लाए अमल पे कोई बात हुई है? तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मिल लें और फिर उसके बाद चौथी पार्टी कौन सी रह गई है यहाँ की? PTI. यहाँ पे यार जहन में ही नहीं आती, अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुई है PTI कराची की पार्टी. सो PTI जो है वो उनके भी कराची के कोई लीडर वीडर कोई हों अगर तो वो मिलने आगे, तो वो बना लो एक मुश्तरका लाए अमल यार. आ जाओ जी, बैठ जाओ, धरना दे दो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने यार, और बंद कर दो, चोक कर दो आपका रेड जोन जो है वहां पे. तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ले आओ 1.5-2 लाख ले आओ सड़कों पे यार. नहीं कुछ नहीं भाई, बस मैं तो अपना वोट चमकाऊंगा, मैं बस क्या बताऊं यार. ठीक है सर, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस लोकल गवर्नमेंट निजाम के हवाले से. ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, ऑफ कोर्स दिस द लास्ट लिंक ऑफ टुडेज शो, और इसमें हमें जरा ट्रेड के नंबर की बात कर लेते हैं. इसके अलावा यूसुफ का मैसेज आया, कहते हैं दिल भाई स्क्विड गेम्स के बारे में क्या रिव्यूज हैं आपके? स्क्विड गेम ओके, इट वाज गुड, लाइक इट वाज फाइन. दुनिया देख रही है, पसंद कर रही है उसको. और जो अच्छी बात है इसमें ये कि 8 एपिसोड गेम ओवर, खलास, 9 एपिसोड सॉरी, एंड देन इट्स ओवर. और ठीक है, देखना चाहिए, बट काफी खून खराबा है उसमें, तो जरा देख लीजिएगा. अगर आपका उन चीजों से दिल घबराता है तो फिर आप मत देखिएगा उसको. लेकिन आई थिंक वेरी वेल मेड सीरीज. कुछ सवालात थे जो रह गए उसमें, आई थिंक एंड थोड़ा सा इससे मैं और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी बहरहाल डू वॉच इट. बताऊंगा नहीं मैं आपको, फिर मजा नहीं आएगा. लेकिन यार हमें दुनिया की कोई सीरीज क्या ब्रेकिंग बैड का मुकाबला कर सकती है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. आई डोंट नो व्हाई दैट इज नॉट द नंबर वन शो ऑन नेटफ्लिक्स एवर. But must be somewhere up there, I'm pretty sure. All right, आतिफ के गाने आप लोग पसंद कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है. अहमद शारिक साहब कहते हैं, by the way, Brent is below 70. जी, सुबह हमने इसके वाले से बात की थी. $70 से नीचे Brent जो है वो इस वक्त तक गया हुआ है. और ठीक है, अच्छा है, so far so good in the market. लेकिन याद रहेगी, आज OPEC Plus का इजलास होने वाला है जिसमें ये फैसला होगा कि वो सप्लाई के हवाले से उनकी क्या डिसीजन होने वाला है. और मैं ये देख रहा था, कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि OPEC के कुछ एनालिस्ट जो हैं, OPEC से एसोसिएटेड कुछ एनालिस्ट जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में देयर कुड बी एन ऑयल ग्लट हो सकता है, यानी एक्सेस सप्लाई ऑयल की जो है वो हो सकती है. सो मुझे लग रहा है इनके तेवर जो है ना, इन शयूख के मुझे इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं ऑयल की सप्लाई के हवाले से. ये कुछ कमी इस पर कर सकते हैं एक बार फिर से इन प्राइसेस को बढ़ाने के लिए. अल्लाह पूछेगा इनको, अल्लाह पूछेगा. बिकॉज देखें यार, हम लोग तो है ना फंसे हुए हैं इस वक्त, आपको पता है. कल फिर ट्रेड के नंबर आए. कल रजाक दाऊद साहब ने जो है ना पहला ट्वीट किया, एक्सपोर्ट जो है माशाल्लाह पाकिस्तान की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो 34% से ऊपर गई है. नवंबर के महीने में पाकिस्तान ने $2.9 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट की है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी महीने में मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा नंबर है, अनप्रेसिडेंटेड नंबर है शायद कोई. हाँ, मेरा ये ख्याल है सबसे बड़ा नंबर है कभी आपने किसी एक महीने में $2.9 बिलियन की जो है ना वो एक्सपोर्ट्स की नहीं है. पिछले साल नवंबर में $2.17 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, अक्टूबर के महीने में 2.47 की. सो वो एक्सपोर्ट्स का मोमेंटम जो है ना वो इस वक्त बना हुआ है. नवंबर में 34% इजाफा हुआ कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर. अगर हम क्यूमुलेटिव इस फिस्कल ईयर की बात करें, यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक, तो 27% इजाफा हुआ है. एंड दिस इज अ प्रिटी गुड एक्सपोर्ट ग्रोथ. काश पाकिस्तान अपनी इन एक्सपोर्ट ग्रोथ को जो है वो 2008 के बाद मेंटेन करने में कामयाब रहता, तो पाकिस्तान की आज एक्सपोर्ट जो है ना वो कुछ 100 अरब डॉलर के करीब होती है, और हमारे बहुत सारे दुलद्दल और बहुत सारे जो मसाइल है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. लेकिन खैर, लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज आई, और वो बैड न्यूज ये, और रजाक साहब के ट्वीट से लग गया था कि बेटा इम्पोर्ट का नंबर इतना बड़ा है कि रजाक साहब ने अपने ट्वीट में मेंशन ही नहीं किया. उन्होंने कहा जी अभी हम नंबर कंपाइल कर रहे हैं, इसका मतलब उस पर तो ट्वीट आना नहीं है. यार इम्पोर्ट का नंबर बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इम्पोर्ट का नंबर, 8 बिलियन डॉलर्स, 8 अरब डॉलर की इम्पोर्ट जो है पाकिस्तान ने की है. आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल नवम्बर में हमने 4 अरब डॉलर की इम्पोर्ट, तकरीबन डबल हो गई है पिछले साल नवम्बर के मुकाबले में. और अगर आप इम्पोर्ट्स की बात करें क्यूमुलेटिव, तो दे आर अप बाई 72%. नाउ दिस इज ऑफ कोर्स पुटिंग, यानी पाकिस्तान की अगर हम ट्रेड की यानी तिजारत की बात करें, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की तिजारत की बात कर रहे हैं, टेंजिबल गुड्स के हवाले से बात कर रहे हैं. सो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है 2.9, विच इज अ गुड नंबर, वेरी नाइस, वेल डन. जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं शाबाशी के मुस्तहक हैं. लेकिन दूसरी जानिब इम्पोर्ट है, दे आर अप, दे नाउ दिस इज अ वरिंग नंबर, 8 बिलियन. तो इसमें एक अच्छी बात है, वो ये है कि क्वांटिटेटिव टर्म में यानी वॉल्यूमेट्रिक टर्म में अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आपकी एक्सपोर्ट एक्चुअली नवंबर के महीने में टेपर ऑफ हुई है, यानी उसमें कंटेनरों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन उन कंटेनर्स की वैल्यू बढ़ गई है बिकॉज उन चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं. होपफुली नवंबर का इख्तिताम जिस तरह हुआ है और दिसंबर का आगाज जिस तरह हुआ है, उसमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस वगैरह, खासतौर से आपको पता ना सारी की सारी गंद जो है ये ऑयल से शुरू होती है, सो वो ऑयल की प्राइस जरा कुछ काम अल्लाह करे या मेंटेन रहे कुछ है, और ओपेक ज्यादा इसमें गंद करे ना, तो सिचुएशन कुछ काबू में रह सकती है पाकिस्तान की. अदरवाइज ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है. तो अब क्या है कि सिर्फ ट्रेड में ही आपको 5 बिलियन के इस गैप को भरना है, ठीक है जी, और इसके अलावा सर्विसेज का एक खसारा होता है और भी होते हैं. सो इस बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका नंबर बड़ा दिलचस्प रहेगा देखने के लिए. लेकिन जो एक अच्छी बात इसमें समझ में आ रही है और जो आ रही है वो ये कि देखिए जी, इम्पोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रिवन है, कीमतें इंटरनेशनली बढ़ी हुई हैं जिसकी वजह से आपको ये नुकसान हो रहा है. इसका फ़ायदा आपको बाय द वे एक्सपोर्ट्स में भी हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कीमतें बड़े होने का, आप भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये थोड़ी कि आप वो चीज़ें एक्सपोर्ट ही नहीं करते नहीं, कीमतें नहीं बढ़ती, तो उसमें आपको वहाँ पर भी फ़ायदा हो रहा होगा. लेकिन ज़ाहिर है जो प्रोपोर्शनली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इम्पोर्ट्स में जो है वो आपके कीमतें जो है ना वो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं. सो जो मेरा ये ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि एक्सपोर्ट्स की जो इंक्रीज होती हैं ये ज़्यादा स्टिकी होती हैं, स्टिकी इन द सेंस कि आप इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन. इम्पोर्ट वाली चीज़ इंशाल्लाह जब ये प्राइसेस कम होना अगर अल्लाह करे शुरू, जैसा कि हमें लग रहा है कि शुरू हो गई हैं, थोड़ी बहुत सिचुएशन इंप्रूवमेंट की जाने जा रही है, तो हो सकता है कि ये नंबर कम होना शुरू हो जाए. तो सबका यही कहना है कि यार ये जो प्राइसेस हैं, हमने अमरीका के भी जेरोम पावल साहब को सुना परसों, वो कह रहे थे कि यार देखिए इन्फ्लेशन वो ट्रांजिशनरी इन्फ्लेशन इसको कह रहे थे कि ये बस 2-3 महीने की कहानी है, फिर नहीं, वो ये कहते हैं ये थोड़े दिन रुकेगी लेकिन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू गो डाउन. इन प्राइसेस पे इंटरनेशनल कमोडिटीज सस्टेन कर नहीं सकती. सो बहरहाल ये एक मुश्किल महीना गुजरा है पाकिस्तान के लिए. कुछ इसमें अचीवमेंट्स भी हैं, हमने FBR का नंबर देखा, बड़ा कमाल नंबर है, और FBR का नंबर कमाल होने में फिर ये इम्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, क्योंकि ये कि आपकी जो कस्टम ड्यूटी होती है जो आप इम्पोर्ट्स पे लगाते हैं, जब 8 बिलियन डॉलर की आप इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी भी वहाँ पे ज़्यादा कलेक्ट करेंगे. तो FBR खुश है जी, हमने छक्का मार दिया, ये हो गया. अभी उसका ब्रेकअप मुझे देखना है कि यार इसमें इनकम टैक्स में भी वैसे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है. सेल्स टैक्स तो गवर्नमेंट पेट्रोल पर ले नहीं रहती, इसलिए उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं है. अब जो दूसरी चीज़ आ गई है वो ये आ गई है कि अब रेमिटेंसेस का नंबर और ये सब करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर पता चलेगा कि यार कितना है, गेम चल रही है. ऐसी थोड़ी यार सऊदी अरब के पास जाके उल्टी सीधी टर्म्स पर उनसे कर्जा लेना पड़ रहा है हमको. बट बहरहाल ये एक बहुत ही इवेंट है जब हमारी इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू. आई होप वी मैनेज टू सस्टेन इट. एक बार फिर से हमें जो है वो शौक ना चढ़ जाए GDP ग्रोथ रेट का. शौकत तरीन साहब आ गए ना लाइन पे, आ गए लाइन पे, ठीक है चलें जी. इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात अब मेरी कल सुबह एक बार फिर. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह मिलते हैं तब. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.